नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द जेन ऑफ सीएसएस डिजाइन विजुअल एनलाइटमेंट फॉर द वेब, डेव शेया और मॉली हॉल्शला की 2005 में प्रकाशित वेब डिजाइन पुस्तक है। इसका आधार सीएसएस जेन गार्डन है, वह ऑनलाइन प्रयोगशाला जिसमें एक ही एचटीएमएल दस्तावेज पर अलग अलग स्टाइलशीट लगाकर अत्यंत भिन्न दृश्य रूप बनाए गए। पुस्तक चुने हुए 36 डिजाइनों को केस स्टडी के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य केवल सीएसएस नियम सिखाना नहीं, बल्कि दृश्य सोच और मानक आधारित कार्यान्वयन के रिश्ते को स्पष्ट करना है। हर उदाहरण में लेआउट, रंग, टाइपोग्राफी, चित्रों और संरचना के चुनाव के साथ उन्हें लागू करने की तकनीकी प्रक्रिया पर ध्यान है। यह है उस दौर की वेब मानक आंदोलन की सोच को भी सामने लाती है, जिसमें सामग्री के अर्थपूर्ण मार्कअप को प्रस्तुति से अलग रखना महत्वपूर्ण था। इसलिए यह पुस्तक संदर्भ ग्रंथ, डिजाइन विश्लेषण और व्यावहारिक सीएसएस मार्गदर्शिका तीनों का मिश्रण है। आज इसके कुछ तकनीकी तरीके पुराने लग सकते हैं, फिर भी इसके मूल सिद्धांत आधुनिक, रिस्पॉन्सिव और सुलभ वेब निर्माण के लिए उपयोगी बने हुए हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले एक ही एचटीएमएल संरचना से विविध दृश्य पहचान। पुस्तक का केंद्रीय प्रदर्शन यह है कि वेब पृष्ठ का एचटीएमएल बदलने के बिना केवल सीएसएस बदलकर उसका रूप नाटकीय रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। सीएसएस जेन गार्डन में सभी योगदानकर्ताओं को लगभग एक ही सामग्री और संरचना मिली थी, इसलिए किसी डिजाइन की सफलता को अतिरिक्त मार्कअप, अलग सामग्री या जटिल स्क्रिप्टिंग का परिणाम नहीं माना जा सकता। अंतर मुख्यतः लेआउट, पोजिशनिंग, पृष्ठभूमि चित्र, टाइपोग्राफी, रंग और रिक्त स्थान के उपयोग से पैदा होता है। पुस्तक इस सीमा को रचनात्मक बाधा की तरह देखती है। सीमित ढांचे में काम करने से डिजाइनर को यह तय करना पड़ता है कि पृष्ठ की सूचना पदानुक्रम कैसे उभरेगी, पाठ कहाँ पढ़ा जाएगा और सजावटी तत्व सामग्री को ढकने के बजाय उसे कैसे सहारा देंगे। यह दृष्टि उस गलत धारणा का प्रतिवाद करती है कि मानक आधारित सीएसएस डिजाइन अनिवार्यतः सपाट, चौकोर या कम अभिव्यंजक होता है। केस स्टडी दिखाती है कि एक साझा दस्तावेज भी अलग ब्रांड व्यक्तित्व, वातावरण और पठन अनुभव दे सकता है। साथ ही यह सिद्धांत सामग्री प्रबंधन वाले आधुनिक उत्पादों में भी उपयोगी है, जहां एक स्थिर सामग्री मॉडल को कई दृश्य थीमों में प्रस्तुत करना पड़ता है। दूसरा, दृश्य डिजाइन निर्णयों और सीएसएस कार्यान्वयन का संयुक्त अध्ययन। इस पुस्तक की विशिष्टता यह है कि यह सुंदर परिणाम को केवल प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत नहीं करती, चुने गए प्रत्येक जेन गार्डन डिजाइन के साथ दृश्य उद्देश्य और उसे बनाने की तकनीकी रणनीति दोनों पर चर्चा की जाती है। पाठक यह समझ सकता है कि किसी रचना में रंगों का सीमित समूह, बड़े चित्र, असममित संतुलन या विशिष्ट टाइपोग्राफी क्यों चुनी गई, और फिर यह भी कि उसे सीएसएस से कैसे व्यवस्थित किया गया। यह क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल गुणों और चयनकों की सूची किसी व्यक्ति को बेहतर दृश्य निर्णय लेना नहीं सिखाती। दूसरी ओर, केवल आकर्षक स्क्रीनशॉट यह नहीं बताते कि डिजाइन को ब्राउजर में टिकाऊ तरीके से कैसे बनाया जाए। पुस्तक इन दोनों स्तरों को जोड़ती है। यह दिखाती है कि तकनीकी उपाय को रचना की जरूरत से निकलना चाहिए, न कि उपलब्ध किसी चाल के प्रदर्शन से। उदाहरणों के माध्यम से पाठक प्रस्तुति के पीछे की प्राथमिकताओं पर विचार करता है, जैसे पाठ की पठनीयता, दृश्य केंद्र, सजावट की भूमिका और सूचना की क्रमबद्धता। इस कारण यह सामग्री उन डेवलपरों के लिए उपयोगी है जो दृश्य भाषा को बेहतर समझना चाहते हैं, और उन डिजाइनरों के लिए भी जो अपने विचारों के कार्यान्वयन की सीमाओं तथा संभावनाओं को जानना चाहते हैं। तीसरा, वेब मानकों में संरचना और प्रस्तुति को अलग रखने का सिद्धांत। पुस्तक उस समय की वेब मानक आधारित सोच से निकली है, जिसमें अर्थपूर्ण एचटीएमएल संरचना को दृश्य प्रस्तुति से अलग रखना मूल अनुशासन था। सीएसएस जेन गार्डन का स्थिर दस्तावेज इस विचार का प्रत्यक्ष परीक्षण है। यदि शीर्षक, अनुच्छेद, सूची और कड़ियों की संरचना सही अर्थ में बनी हो, तो स्टाइलशीट उन्हें अनेक रूपों में व्यवस्थित कर सकती है। यह विभाजन केवल सौंदर्य का मामला नहीं है, इससे सामग्री को बनाए रखना, अलग थीम लागू करना और विभिन्न उपयोग परिस्थितियों में उसे पढ़ना अपेक्षाकृत सरल होता है। पुस्तक का संदेश यह नहीं कि हर दृश्य आकांक्षा बिना समझौते के संभव है, बल्कि वह रचनात्मकता को ऐसे ढांचे में रखने की बात करती है जिसमें दस्तावेज की उपयोगिता बनी रहे। उस समय तालिका आधारित लेआउट और प्रस्तुति के लिए अतिरिक्त मार्कअप आम थे, इसलिए सीएसएस आधारित तरीका रखरखाव और लचीलेपन के पक्ष में ठोस बदलाव था। आधुनिक वेब में फ्रेमवर्क और कंपोनेंट प्रणालियां बदल चुकी हैं, पर यह प्रश्न अब भी महत्वपूर्ण है कि सामग्री का अर्थ, उसका क्रम और उसका रूप कहां परिभाषित होगा। पुस्तक के उदाहरण पाठक को याद दिलाते हैं कि अच्छा फ्रंट एंड काम दृश्य परिणाम और संरचनात्मक अनुशासन दोनों की जिम्मेदारी लेता है। चौथा, व्यावहारिक CSS, ब्राउजर संगति और फॉलबैक की प्राथमिकता। द जीन ऑफ CSS डिजाइन प्रयोगात्मक चमक के बजाय कार्यशील और व्यापक रूप से समर्थित CSS को महत्व देती है। जेन गार्डन की मूल दिशा, CSS 1 और 2 के भरोसेमंद उपयोग, मान्य स्टाइल शीट और जरूरत पड़ने पर नए फीचरों के लिए फॉलबैक पर आधारित रही है। यह प्राथमिकता पुस्तक के तकनीकी संदर्भ को समझने में जरूरी है। उसका लक्ष्य किसी एक ब्राउजर में प्रभावशाली चित्र बनाना नहीं, बल्कि ऐसे डिजाइन विकल्पों को समझाना है जो वास्तविक वेब की विविध परिस्थितियों में काम कर सके। पुराने ब्राउजरों की सीमाएं, रेंडरिंग के अंतर और स्क्रीन आकारों की विविधता उस समय भी महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। इसलिए उदाहरणों से मिलने वाला बड़ा सबक यह है कि किसी तकनीक का मूल्य उसके दृश्य प्रभाव से ही तय नहीं होता। रखरखाव, समझने में आसानी, सामग्री तक पहुंच और असमर्थ वातावरण में स्वीकार्य व्यवहार भी उतने ही जरूरी है। आज CSS में ग्रिड, फ्लेक्स बॉक्स और कस्टम प्रॉपर्टीज जैसे अधिक सक्षम साधन हैं जिनकी पुस्तक में चर्चा नहीं हो सकती थी। फिर भी फॉलबैक और प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट की मानसिकता प्रासंगिक है। पाठक पुराने कोड को आधुनिक नुस्खे की तरह अपनाने के बजाय तकनीकी विकल्पों का मूल्यांकन करने का अनुशासन सीख सकता है। अंत में 36 केस स्टडी के माध्यम से डिजाइन प्रक्रिया को दृश्य प्रमाण बनाना। पुस्तक 36 चयनित प्रस्तुतियों को एक रूप ट्यूटोरियल की तरह नहीं, बल्कि अलग अलग समाधान पद्धतियों के संग्रह की तरह रखती है। प्रत्येक केस स्टडी को पर्याप्त स्थान देकर वह यह अवसर देती है कि पाठक अंतिम स्क्रीन के पीछे के निर्णयों को अलग संदर्भ में देखे। किसी डिजाइन में प्रकृति आधारित चित्रात्मकता प्रमुख हो सकती है, किसी में टाइपोग्राफिक प्रभाव और किसी में स्थानिक व्यवस्था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी एक ही सामग्री से शुरू होते हैं। इस साझा आधार के कारण तुलना सार्थक बनती है। पाठक देख सकता है कि समान शीर्षकों और अनुच्छेदों को अलग प्राथमिकता देने पर पृष्ठ की गति, भाव और उपयोग अनुभव कैसे बदल जाते हैं। केस स्टडी प्रारूप का एक और लाभ यह है कि वह CSS को नियमों की अमूर्त सूची से निकालकर निर्णयों के परिणाम के रूप में दिखाता है। पाठक को हर तरीका हूबहू दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। अधिक उपयोगी सीख यह है कि किसी दृश्य लक्ष्य को छोटे घटकों में कैसे बांटा जाए, कौन से संरचनात्मक प्रतिबंध स्वीकार किए जाए और सजावट तथा सामग्री के बीच संतुलन कैसे रखा जाए। इस प्रकार पुस्तक का संग्रहात्मक स्वरूप प्रेरणा और आलोचनात्मक निरीक्षण दोनों को साथ रखता है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन वेब डिजाइनरों, फ्रंट एंड डेवलपरों और छात्रों के लिए सबसे उपयोगी है जो CSS जानते हैं पर उसके माध्यम से ठोस दृश्य पहचान बनाने की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं। यह उन दृश्य डिजाइनरों के लिए भी सार्थक है जिन्हें यह जानना है कि लेआउट, टाइपोग्राफी और चित्रात्मक विचार सीमित तथा अर्थपूर्ण HTML ढांचे में कैसे लागू किए जा सकते हैं। पाठक को आधुनिक CSS के नवीनतम फीचर, रिस्पॉन्सिव ब्रेकपॉइंट या आज के फ्रेमवर्क सीखने के लिए इसे अकेला स्रोत नहीं मानना चाहिए। प्रकाशन काल के कारण कई तकनीकी संदर्भ पुराने हैं, फिर भी इसकी उपयोगिता तकनीकी सूची से अधिक उसकी पद्धति में है। यह बार बार दृश्य इरादे, सामग्री संरचना, ब्राउजर व्यवहार और रखरखाव के बीच संबंध पर ध्यान दिलाती है। समान विषय की अनेक पुस्तकों में या तो CSS सिंटैक्स और लेआउट नियम प्रमुख होते हैं या फिर डिजाइन प्रेरणा के लिए केवल तैयार उदाहरण होते हैं। द जेन ऑफ CSS डिजाइन इन दोनों को केस स्टडी के माध्यम से जोड़ती है। एक ही स्रोत दस्तावेज पर आधारित 36 डिजाइनों का चयन उसके तर्क को अनुमान नहीं, दृश्य प्रमाण बनाता है। इसलिए यह पुस्तक आज मुख्यतः ऐतिहासिक वेब मानक संदर्भ और डिजाइन सोच की पुस्तक है। इसके उदाहरणों का विश्लेषण पाठक को यह अभ्यास देता है कि वह किसी आकर्षक इंटरफेस को केवल पसंद या नापसंद करने के बजाय उसके संरचनात्मक और दृश्य निर्णयों को पहचान सके। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं देवशी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।